लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि श्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्णता हासिल करे, परिवारों का भरण पोषण प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से हो सके तथा समाज को मानवीय बनाया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के पवित्र हृदय पर विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस, अर्थात उसने हमें प्रेम किया है की चर्चा सुन रहे हैं। हमने दिल एक्सित नोस के चौथे अध्याय की शुरुआत की है, जिसका शीर्षक है एक प्रेम जो हमें अपने को पे स्वरूप देता है। हमने अपने विगत प्रसारण में पवित्र हृदय के विषय में संत मेरी मार्गरेट की भक्ति के बारे में चर्चा की। आज हम संत क्लाउदे देला कोलंबियारी, संत चार्ल्स फौकॉल्ट और बालक यीशु के संत तेरेसा की भक्ति का जिक्र करेंगे। जब संत क्लाउदे देला कोलंबियारी को संत मेरी मार्गरेट के अनुभवों के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने उनकी रक्षा करने की पहल की और उन्हें दर्शन में कहे गए वचनों को प्रसारित करना शुरू किया। संत क्लाउदे ने पवित्र हृदय के प्रति भक्ति के विकास और सुसमाचार के प्रकाश में इसके अर्थ को समझने हेतु एक विशेष भूमिका निभाई। संत मेरी मार्गरेट की कुछ भाषा यदि सही तरीके से नहीं समझा जाए तो यह हमारे व्यक्तिगत त्याग और बलिदानों पर अत्यधिक भरोसा का स्वरूप होने से प्रतीत होते हैं। संत क्लाउदे इस बात पर जोर देते हैं कि यीशु के हृदय पर चिंतन करना, जब यह सच्चा होता है तो यह आत्म संतुष्टि या हमारे अपने अनुभवों या मानवीय प्रयासों में व्यर्थ आत्मविश्वास को उत्तेजित नहीं करता है, बल्कि यह मसीह में एक अकथनीय त्याग को उत्प्रेरित करता है जो हमारे जीवन को शांति, सुरक्षा और निर्णय से भर देता है। उन्होंने अपने इस अभूतपूर्व विश्वास को एक अति सुंदर प्रार्थना में अभिव्यक्त किया है। मेरे प्रभु, मैं इस बात से पूर्ण रूपेण विश्वस्त हूँ कि तू अपने ऊपर आशा रखने वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है और तेरी ओर अपनी सारी चीजों की खोज हेतु निगाहें बनाए रखने में हम किसी चीज की कमी का एहसास नहीं करते हैं। मैं भविष्य में हर चिंता से मुक्त रहने और अपनी सारी चिंताओं को तेरे ऊपर डालने का संकल्प लेता हूँ। मैं अपनी आशा नहीं खोऊंगा, मैं इसे अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक बनाए रखूंगा और उस घड़ी नरक के सभी शत्रु जो उसे मुझसे छीनने का प्रयास करेंगे, अन्य लोग अपने जीवन की निर्दोषता या अपनी तपस्या की गंभीरता या अपने दान की मात्रा या अपनी प्रार्थनाओं की उत्कृष्टता पर भरोसा कर सकते हैं, जबकि मेरे लिए हे प्रभु मेरा विश्वास ही अपने में मेरा विश्वास है। विश्वास ने किसी को धोखा नहीं दिया है, अतः मैं सुनिश्चित हूँ कि मैं अनंत जीवन तक खुश रहूंगा, क्योंकि मैं इस पर दृढ़ आशा बनाए रखता हूँ, क्योंकि यह तुझसे आती है हे प्रभु जिसकी आशा मैं करता हूँ। श्रोताओ, सन 1677 जनवरी के अपने लेख में अपनी प्रेरिताई के बारे में सुनिश्चितता का जिक्र करते हुए क्लाउदे लिखते हैं, मैं यह जान गया हूँ कि ईश्वर चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करूँ तथा उस भक्ति के संबंध में अपनी इच्छाओं की पूर्ति प्राप्त करूँ, जिसका सुझाव उन्होंने उस व्यक्ति को दिया है जिस पर वे विश्वास करते हैं तथा जिसके लिए उन्होंने मेरी दुर्बलता का उपयोग करने की इच्छा की है। मैंने इसका उपयोग पहले ही कई लोगों की सहायता हेतु किया है। श्रोताओं, हमें इस बात को स्वीकार करने की जरूरत है कि धन्य क्लाउडे देला कोलंबियारे की आध्यात्मिकता संत मेरी मार्गरेट के गहन और मार्मिक आध्यात्मिक अनुभव का एक उत्कृष्ट संक्षेपण है, जिसे हम लोयोला के संत इग्नासियस की आध्यात्मिक चिंतन में ठोस और प्रत्यक्ष रूप में पाते हैं। आध्यात्मिक साधना के तीसरे सप्ताह के शुरू में क्लाउडे चिंतन करते हैं, दो चीजों ने विशेष रूप से मुझे प्रभावित किया। प्रथम, यीशु ख्रिस्त के मनोभाव उनके प्रति जो उन्हें गिरफ्तार करने आए। उनका हृदय दुख के कटुता से भरा था, हर क्रूर हिंसा उसके खिलाफ जारी था और उनकी मानसिक स्थिति में उथल पुथल हो रहे थे। लेकिन इन सारी उलझनों, इन सारी प्रलोभनों के बीच में भी उनका दिल दृढ़ता से ईश्वर में बना रहा। वे अपने में इन महान गुणों का अभ्यास करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते हैं। दूसरा, उसी हृदय में यूदस के प्रति मनोभाव जिन्होंने उनके संग विश्वासघात किया, प्रेरित जिन्होंने उन्हें कायरता पूर्वक छोड़ दिया, महायाजकों और अन्य लोग जो उनके दुखभोग उत्पीड़न के जिम्मेदार थे, इनमें से कोई भी बात उनके अंदर घृणा या आक्रोश की थोड़ी सी भावना भी उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थी। मैं अपने को नए रूप में इस क्रोध कटुता मुक्त हृदय को अर्पित करता हूँ, जो अपने में शत्रुओं के प्रति भी सच्चे प्रेम की भावना से भरे है। श्रोताओं, संत फौकॉल्ड और बालक यीशु के संत तेरेसा यीशु के पवित्र हृदय की आराधना के कुछ निश्चित बातों को बिना परिवर्तन करने के उद्देश्य से हमें इसके बारे में और इसके सुसमाचारी प्रचार के मनोभाव को समझने में मदद करते हैं। आइए अब हम इस बात को देखने का प्रयास करें कि यह भक्ति उनके जीवन में किस प्रकार अभिव्यक्त हुई। अगले अध्याय में हम उनका जिक्र करेंगे ताकि यह दर्शाया जा सके कि उनमें से प्रत्येक ने पवित्र हृदय की भक्ति में विशिष्ट प्रेरितिक आयाम को स्थापित किया है। लुए में चार्ल्स डी फौकॉल्ड अपनी चचेरी बहन मारिये डी ब्रांडी के साथ पवित्र संस्कार की भेंट करने के आदि थे। एक दिन उसने अपने भाई को पवित्र हृदय की एक तस्वीर दिखलाई। फौकॉल्ड की चचेरी बहन ने चार्ल्स के मन परिवर्तन में एक अहम भूमिका निभाई, जैसे कि वे स्वयं इसे स्वीकार करते हैं। क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें मेरे लिए चमत्कार का प्रथम साधन बनाया है, तुमसे सारी चीजें शुरू होती हैं। यदि तुमने मेरा मन परिवर्तन नहीं किया होता, यीशु के पास लाते हुए उन सारी बातों के संबंध में जो पवित्र और अच्छी हैं, धीरे धीरे शब्द दर शब्द नहीं बतलाया होता, तो मैं नहीं जानता कि मैं आज कहाँ होता। मारिये ने उसमें यीशु के प्रेम से संबंधित एक गहरी चेतना जगा दी। वह एक महत्वपूर्ण बात थी और यीशु के हृदय की भक्ति में उसे एक असीमित करुणा का मिलन हुआ। आओ हम उस अनंत करुणा पर विश्वास करें और उस हृदय पर जिसकी ओर तूने मुझे अग्रसर किया। श्रोताओं, बाद में उनके आध्यात्मिक संचालक पुरोहित हेनरी हुवेलिन ने पवित्र हृदय के रहस्य को गहराई से समझने हेतु चार्ल्स की मदद की, जो बहुधा उसके बारे में उनसे जिक्र किया करते थे। 6 जून 1898 को चार्ल्स ने अपने को पवित्र हृदय के प्रति समर्पित किया, जहां उन्हें असीमित प्रेम का अनुभव हुआ। उसने यीशु ख्रिस्त से कहा, तूने मुझ पर असंख्य कृपा दानों की वर्षा की है, इस बात पर विश्वास न करना कि तू मुझे हर अच्छाई, चाहे वह कितना भी भला क्यों ना हो, देने को तैयार है। तेरे हृदय के प्रति कृतघ्नता प्रतीत होगी। यदि मैं यह विश्वास न करूं कि यह मुझे हर अच्छाई, चाहे वह कितनी भी महान क्यों ना हो, प्रदान करने के लिए तैयार है, और यह कि तेरा प्रेम और तेरी उदारता असीम है। वह यीशु के नाम का अनुसरण करते हुए एक सन्यासी बनने वाला था। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस की चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। ओ प्यारी मां।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने बतलाया कि पोप लियो 14वें और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की फोन पर बातचीत हुई है। उनकी बातचीत पोप लियो 14वें की रविवार की अपील के बाद हुई, जिसमें उन्होंने यूक्रेन में दीर्घकालिक और स्थायी शांति के लिए हर संभव प्रयास किए जाने और सभी बच्चों को उनके परिवारों के पास वापस भेजे जाने की मांग की थी। रविवार को पोप ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के मुख्य झरोखे से स्वर्ग की रानी प्रार्थना के दौरान यूक्रेन में शांति की अपील की थी। उन्होंने कहा था, मैं अपने दिल में प्रिय यूक्रेनी लोगों की पीड़ा को लेकर चलता हूं। उन्होंने आग्रह किया कि जितने जल्दी हो सके सच्ची न्यायपूर्ण और स्थायी शांति तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा था कि सभी कैदियों को रिहा किया जाए और बच्चों को उनके परिवारों को लौटाया जाए। पोप ने याद दिलाया था कि 8 मई को द्वितीय विश्व युद्ध की बड़ी त्रासदी 80 साल पहले 60 मिलियन लोगों की मौत का कारण बनने के बाद समाप्त हुई थी। इसके बाद उन्होंने अपील की थी कि यूक्रेन गजा और भारत पाकिस्तान सीमा पर फिर कभी युद्ध न हो। बातचीत के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोप लियो 14वें के साथ अपनी पहली बातचीत के बारे में एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के समर्थन के लिए पोप को धन्यवाद दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, हमारे देश के लिए न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति प्राप्त करने तथा कैदियों की रिहाई की आवश्यकता के बारे में उनके शब्दों को हम बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने बतलाया कि उन दोनों ने रूस द्वारा निर्वासित हजारों यूक्रेनी बच्चों पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन उन्हें उनके परिवारों के पास वापस लाने में वैटिकन की सहायता पर निर्भर है। इसके द्वारा राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने पोप को यूक्रेन और हमारे साझेदारों के बीच हुए समझौते के बारे में बतलाया कि आज से कम 30 दिनों के लिए पूर्ण एवं बिना शर्त युद्ध विराम शुरू होना चाहिए। राष्ट्रपति ने बतलाया कि उन्होंने सीधी बातचीत सहित किसी भी प्रारूप में आगे की बातचीत के लिए यूक्रेन की तत्पर ताकि पुष्टि की। इस भावना में उन्होंने कहा, यूक्रेन इस युद्ध को समाप्त करना चाहता है और इसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और यूक्रेन रूस से इसी तरह के कदमों का इंतजार कर रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने पोप लियो 14वें को यूक्रेन की प्रेरित यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा, इस तरह की यात्रा सभी विश्वासियों और हमारे सभी लोगों के लिए वास्तविक आशा लाएगी। जेलेंस्की ने कहा कि हम संपर्क में रहने और निकट भविष्य में एक व्यक्तिगत मुलाकात की योजना बनाने पर सहमत हुए हैं। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने मई माह के लिए पोप लियो 14वें के आगामी धर्मविधिक समारोहों की घोषणा की है, जिसमें रविवार 18 मई को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में उनके परमाध्यक्ष काल के उद्घाटन का समारोह भी शामिल है। धन्य कुमारी मरियम को समर्पित इस महीने के दौरान संत पापा विभिन्न धर्मविधिक समारोहों की अध्यक्षता करेंगे और रोम स्थित महागिरजाघरों का कई बार दौरा करेंगे। पोप के कार्यक्रमों की सूची इस प्रकार है। 18 मई पास्का के 5वें रविवार को पोप लियो 14वें संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में पूर्वाहन 10 बजे अपने परमाध्यक्ष काल का उद्घाटन एक समारोह ख्रिस्ताग के साथ करेंगे। मंगलवार 20 मई को पोप शाम 5 बजे संत पॉल महागिरजाघर की तीर्थयात्रा करेंगे, जहां वे संत पॉल की कब्र का दौरा करेंगे। रविवार 25 मई को पास्का के 6वें रविवार को पोप लियो 14वें शाम 5 बजे संत जॉन लैथरन महागिरजाघर में समारोह ख्रिस्ता का अनुष्ठान करेंगे। इस पौत्र मिस्सा में रोम के धर्माध्यक्ष पद पर पोप का औपचारिक पदस्थापन शामिल होगा। उसी दिन शाम 7 बजे पोप लियो 14वें संत मरिया मेजर महागिरजाघर का दौरा करेंगे, जहां वे धन्य कुमारी मरियम की प्रतिष्ठित प्रतिमा सालुस पोपोले रोमानी का दर्शन करेंगे। इस प्रकार यह पोप लियो 14वें का माता मरियम को समर्पित इस महागिरजाघर में दूसरी बार आना होगा। पोप के रूप में वे पहली बार शनिवार शाम को गए थे, जब वे अगुस्टीनियन धर्म समाज द्वारा संचालित मरियम तीर्थस्थल पर आकस्मिक दौरा करने के बाद वैटिकन लौट रहे थे और अंततः शनिवार 31 मई को धन्य कुमारी मरियम के पर्व दिवस पर वे सुबह 10 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर में पुरोहिताभिषेक के साथ ख्रिस्ताग की अध्यक्षता करेंगे। हम जानते हैं कि प्रभु बच्चों की प्रार्थनाएं सुनते हैं जो उनके दिल में हैं। और भारत एवं पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का हमारे लिए विशेष महत्व है, क्योंकि हम इसे बच्चों की प्रार्थनाओं का फल मानते हैं। उक्त बात का पुचिन फादर कैसर फिरोज ने फिदेस एजेंसी से कही, जो पाकिस्तानी पंजाब के लाहौर के बाहरी इलाके में स्थित स्वर्गदूतों की रानी पल्ली के पल्ली पुरोहित हैं। पल्ली पुरोहित ने फिदेस को बतलाते हुए कहा, शनिवार 10 मई को बच्चों और परिवारों का एक दल भाई फेरुपल्ली के शांति की रानी माता मरियम ग्रोटो के सामने एकत्रित होकर मैं, अन्य धर्म बंधु फादर रॉबिन्सन ओ एफ एम कैप और मरियम की फ्रांसिस्कन मिशनरी धर्म बहनों ने पल्ली समुदाय के साथ शांति के लिए रोजरी माला विनती की। प्रार्थना के अंत में हमने शांति के प्रतीक के रूप में कुछ कबूतर छोड़े और बच्चों की उत्कट इच्छा को पूरा किया। रोजरी माला विनती के अंत में आश्चर्यजनक घटना हुई। हमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की अद्भुत खबर मिली। अब हम आशा करते हैं कि यह कायम रहेगा और दोनों पक्षों के बीच एक न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति स्थापित होगी। फादर फिरोज कहते हैं कि अन्य बातों के अलावा पल्ली के लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि पिछले दिनों कश्मीर के विवादित क्षेत्र में सैन्य झड़पों के कारण भाई फेरू में स्वर्गदूतों की रानी पल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में एक गोली लगी थी। फादर फिरोज कहते हैं, यह कुछ ऐसा था जैसे युद्ध हमारे घर में आ गया हो। बहुत आशंका थी और इस कारण से हमने शांति के लिए प्रार्थना तेज कर दी। पाकिस्तान में पूरी कलीसिया ने युद्ध विराम का स्वागत किया है। हैदराबाद के धर्माध्यक्ष और पाकिस्तान के धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष बिशप सैमसंग शुकारदीन ओएफएम ने एक सार्वजनिक संदेश में कहा, हाल के तनाव और सैन्य झड़पों के बाद शांति की ओर यह महत्वपूर्ण कदम पूरे क्षेत्र में लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत एवं उम्मीद का स्रोत है। पाकिस्तान के धर्माध्यक्ष बातचीत एवं संयम का रास्ता चुनने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हैं और इस शांतिपूर्ण सफलता को सुगम बनाने में उनकी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों, विशेष रूप से अमेरिका और अन्य वैश्विक भागीदारों के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।